लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि ख्रिस्तीय एवं अन्य सभी धर्मों के अनुयायी तथा समस्त शुभचिंतक लोग विश्व में शांति और न्याय को बढ़ावा दें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है एक मुलाकात कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुतता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, एक मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत बिशप आनंद जोजो के साथ हुई भेंट वार्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी व्यक्ति, संस्था या किसी महत्वपूर्ण कार्य के जन्म या आरंभ होने के 25 वर्ष पूरा होने पर मनाई जाने वाली जयंती को रजत जयंती कही जाती है। यह समय अपने आप में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। यह अपने उपलब्धियों, कमियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा करके अतीत पर विश्लेषण करती है, वहीं प्रगति हेतु अपना लक्ष्य भी निर्धारित करती है। बाइबल में भी जयंती वर्ष का जिक्र किया गया है। इसके अनुसार जयंती वर्ष को एक आजादी, अनुग्रह, संबंधों को ठीक करने, न्याय स्थापित करने एवं भविष्य की ओर देखने का समय बतलाया गया है। मूसा ईश्वर के आदेशानुसार लोगों को जयंती वर्ष मनाने की सलाह इस प्रकार देते हैं। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर सदा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मेरे आदेशों एवं विधियों का पालन करो। ऐसा करने पर तुम देश में सुरक्षित निवास करते रहोगे। विश्वास हमें सिखलाती है कि हम ईश्वर के आदेशों एवं विधियों का पालन किस तरह करें। अतः विश्वास में सुदृढ़ होना आवश्यक है। हजारीबाग धाम प्रांत इस वर्ष अपना रजत जयंती मना रहा है। उन्होंने विश्वास के नवीनीकरण को ही अपना मुख्य विषय वस्तु रखा है। तो आइए जानते हैं कि इस मूल्यवान समय को वे किस तरह मनाने वाले हैं। हमारे साथ बात कर रहे हैं हजारीबाग के माननीय बिशप आनंद जोजो।
न केवल परिवार, लेकिन हमारा पल्ली भी उसी तरह विश्वास में सुदृढ़ बने, और इसके लिए हम जुबली वर्ष के अवसर पर बिनती उपवास और तीर्थ यात्रा का भी हमने आयोजन किया है, और इसके लिए 5 पल्लियों को निर्दिष्ट किया गया है कि वो पल्ली हम सबों का तीर्थ स्थल बने और साथ ही साथ दंड मोचन का जगह भी बने, और इस प्रकार उस पल्ली में सालों भर लोग जाएं विश्वास का नवीनीकरण करते हुए ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। न केवल परिवार, लेकिन सब पुरोहित और धर्म समाजियों को भी हम उनके विश्वास और साथ ही साथ एकता, सामुदायिकता और एकता का जीवन बिताने के लिए भी यह जुबली या रजत जयंती वर्ष में हम प्रयास कर रहे हैं, और इनके लिए भी हम लोग आध्यात्मिक साधना विचार गोष्ठी का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और सब कोई मिलकर हालांकि पूरे धर्म प्रांत में एक नया वातावरण बनाना चाहते हैं। ईश्वर करे कि इस कार्य को आगे बढ़ने में हमें मदद करे, और इसके फलों को न केवल हम लेकिन भावी पीढ़ी इसका फल देख सके, प्राप्त कर सके। एक और सुंदर कदम उठाया गया है कि हम सब के सब एक दूसरे के बीच में हम लोग बातचीत, सुंदर वातावरण में हम लोग बातचीत करें और विचारों का आदान प्रदान करें। एक साथ मिलकर हम एक परिवार को, एक पल्ली को, धर्म प्रांत को किस प्रकार संचालन होना है, हम विचार विमर्श करें पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, और एक कार्य योजना बन पाए, इसी दिशा पर विचार गोष्ठी हमने किया है। और अंत हम लोगों का लक्ष्य है कि अगला रजत जयंती के बाद अगला जो स्वर्ण जयंती का वर्ष होगा उस समय तक हम सब के सब ईश्वरीय प्रेम और एकता में जुड़ जाएं, एक साथ हो जाएं, और इस तरह हमारा जो समुदाय होगा, छोटा समुदाय परिवार, उससे बड़ा पल्ली, पूरा धम प्रांत, एक समुदाय, ख्रिस्तियों का समुदाय, ये समुदाय समुदायों का समुदाय बन जाए। मैंने सबके बीच में सच्ची समझदारी हो, एकता हो, और साथ ही साथ सभी कार्यों को एक साथ करने के लिए बल और प्रेरणा प्राप्त हो सके, इसी दिशा में हम लोग कार्य करने वाले हैं। तो मुख्य रूप से जुबली वर्ष में यही कार्य योजना है। ईश्वर करे कि इस कार्य योजना के अनुसार हम अपने आप को तैयार कर सकें, अपने आप को इसके लिए दे सकें।
बहुत ही अच्छी योजना आपने बनाई है और उसको लागू करने का प्रयास भी कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी कि विश्वासियों की ओर से, धर्म सामाजियों की ओर से, पुरोहितों की ओर से आपको कितना सहयोग मिल रहा है, किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है।
इसके लिए मैंने अपने पुरोहितों को, धर्म समाजी भाई बहनों को, लोक धर्मियों को मैंने तैयार कर चुका है, क्योंकि 2018 से ही मैं इस योजना को उनके सामने रखा, अपने धर्म पत्र के माध्यम से, और सभी विचार गोष्ठियों में ये बात आई। और यह विशेष वर्ष है, इसको मैंने जब ऐलान किया, घोषणा किया, तो सभों की उपस्थिति में मैंने किया, और ये जो कार्य योजना है सबों सब कोई मिलकर के हम लोग उसको स्वीकार कर चुके हैं, और इसलिए मैं समझता हूँ कि सबों के मन दिल में इस प्रकार का जो उत्साह और उमंग है, सभी को एक साथ मुड़ने, एक साथ कार्य करने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं।
माननीय बिशप आनंद जोजो, हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। श्रोताओ, एक मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय बिशप आनंद जोजो के साथ हुई भेंट वार्ता को सुन रहे थे।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक विकल्प। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओ, एक समय था जब पिता को पुत्री संतान के नाम से ही खीज होती थी, बेटी को बोझ या जिम्मेदारी समझकर उससे कम ही लाड़ प्यार किया जाता था, लेकिन आज कारण भी बदले हैं और हालात भी। बेटी पिता के लिए एक बोझ या जिम्मेदार बनकर नहीं रह गई है, बल्कि पिता की शान और पहचान का हिस्सा बन रही है। सच तो यह है कि बेटियां आज घर की चार दीवारी में चूल्हे चौके तक ही सीमित नहीं हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां बेटियां विजय पताका न फहरा रही हों। ऐसे में बेटियां बेटे का बेहतर विकल्प साबित हो रही हैं। बेटियों के प्रति पिता के बढ़ते लगाव का कारण वर्तमान में बढ़ते बेटों से निराशा और बेटियों की तरक्की भी है। ऐसा नहीं है कि बेटे तरक्की नहीं कर रहे हैं या वह किसी लायक नहीं, लेकिन बेटों की जीवन शैली, उनकी प्राथमिकताएं और जरूरत आदि बदल रही हैं। वह अपने शौक और परिवाद तक ही सिमट कर रहना पसंद कर रहे हैं। परिवार वालों को ऐसा लगने लगा है कि भविष्य में बेटों से कुछ खास उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। ऐसे में बेटियां न सिर्फ उम्मीद का सहारा नजर आ रही हैं, बल्कि पिता एवं घर परिवार को शान पहचान में भी इजाफा कर रही हैं। अतः बेटियों की पढ़ाई और परवरिश में कोई कमी न करें। क्या पता कल वह आपके बेटे का बेहतर विकल्प बन जाए। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस का लिखा नाटक विकल्प।
तुमने देखा शांति, देखते ही देखते शशांक और रियाज कितने बड़े हो गए।
हाँ ना, अब हमको किसी बात की फिक्र नहीं। दोनों अपना अच्छा बुरा सोचने के लायक हो गए हैं। शशांक तो कितना बड़ा हो गया है, मतलब कितना लंबा चौड़ा है वो।
लंबा चौड़ा तो है, लेकिन देखने भर का है।
आप भी क्या बात करते हैं, अब तो उसकी नौकरी भी लग गई है, अब तो वो कमाने भी लगा है।
अरे हाँ, अब तो वो कमाने भी लगा है, यह बात तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था। लेकिन एक बात तो बताओ, वह अपनी कमाई घर में देता किसे, तुम्हें या मुझे।
आप भी क्या बात करते हैं, अरे अब नौकरी पर लगा है तो उसके भी अरमान होंगे, उसकी भी इच्छाएं होंगी, उसके भी यार दोस्त है, तो यह सब भी देखना पड़ेगा ना।
चलो तुम्हारी बात मान ली मैंने, उसके भी अरमान है, यार दोस्त है, तो क्या सारी कमाई इसी में उड़ाने के लिए। माँ बाप और बहन के लिए उसका कोई फर्ज नहीं बनता।
धीरे धीरे उसे सब समझ आ जाएगा, एक बार उसकी शादी हो जाए वह खुद ही घर गृहस्थी को समझने लग जाएगा।
जो अभी घर गृहस्थी को नहीं समझ रहा है वो बाद में क्या समझेगा। और हाँ, उसके लिए कोई लड़की वगैरह देखने की कोशिश मत करना, उसने एक लड़की ढूंढ रखी है, मैंने कई बार दोनों को साथ में देखा है।
आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी।
तुम उसका पक्ष ना ही लो तो अच्छा है, और उससे इस बात की अपेक्षा भी मत करना कि वह हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा।
क्यों, बेटा है तो बुढ़ापे का सहारा तो बनेगा ही ना।
अगर इस जैसे बेटे से आशा करोगी तो निराशा के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा।
आपको तो बस उसके पीछे लगने का बहाना चाहिए।
रुक जाओ, अभी थोड़े दिन और रुक जाओ, फिर असलियत खुद ही तुम्हारे सामने आ जाएगी, तब पूछूंगा तुमसे।
रिया, तू कॉलेज जा रही है ना?
हाँ, क्यों, मैं तो रोज ही कॉलेज जाती हूँ।
आते समय टेलर के यहाँ से मेरा ब्लाउज लेते आना।
क्या मम्मी, आप भी?
अरे कैसी लड़की है, जरा सा एक काम बोलो तो उसमें भी ना नुकुर।
आपको तो पता है ना कि टेलर के यहाँ जाने के लिए मुझे बस बदलनी पड़ती है।
तो एक दिन तू बस नहीं बदल सकती क्या?
और शशांक भैया से नहीं कह सकती क्या, उसके पास बाइक है?
अब वो ऑफिस से थका मांदा छूटता है, ऐसे में वो यहाँ से वहाँ चक्कर कैसे लगाएगा।
ऑफिस में उसे ही तो थकान हो जाती है, कॉलेज में रिया को थकान थोड़ी होती है, क्यों बेटी? फिर ऑफिस से छूटकर दोस्तों के बीच बैठकर थकान थोड़ी होती है।
दोस्तों के बीच बैठकर थोड़ा फ्रेश हो लेता है वो, और क्या।
तुम तो उसे सर चढ़ाए जाओ बस, एक दिन तुम्हारे इस लाड़ प्यार को ब्याज समेत वापस करेगा वो, तब कहना मुझसे।
शशांक भैया इतने भी बुरे नहीं है जितना आप उसे समझते हैं पापा, आप दोनों के बीच कोई गलत फहमी है।
वही तो मेरा भी कहना है, आखिर है तो हमारा ही बेटा।
पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। लगता है बेटी अपनी माँ की तरह तुझे भी अपने भाई पर बहुत भरोसा है।
वो तो होना ही चाहिए ना।
लेकिन मैं एक बात बता दूं बेटी, हम जिस पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और जब हमें उससे धोखा मिलता है तो हम सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए ज्यादा भरोसा ना करने पर जब धोखा मिलता है तो हम आसानी से सहन कर जाते हैं।
हाँ पापा, ये बात तो है, लेकिन यह बात शशांक भैया पर लागू नहीं होती।
वही तो मैं भी कहती हूँ।
तुम्हें तो बेटी से ज्यादा अपने बेटे से प्यार है, क्योंकि तुम भी औरों की तरह बेटी को बेटे से कम आंकती हो, जबकि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती।
जब बेटा है ही तो बेटी को बेटा बनाने की क्या जरूरत है।
वक्त कभी भी कहकर नहीं आता है, और बुरा वक्त तो बिल्कुल भी बताकर नहीं आता है, इसलिए विकल्प बनने में बुराई ही क्या है।
आपका कहना भी बिल्कुल ठीक है पापा, क्यों मम्मी?
ये तो तुम बाप बेटी ही जानो। सुनो, हमारा शशांक शादी के लायक हो गया है। उसकी शादी वादी करना है या उसे ऐसे ही बूढ़ा कर देंगे आप?
मेरे ख्याल से इस बारे में मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, तुम फिर वही बात लेकर बैठ गई हो।
मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि जरूर उस बारे में आपको कोई ना कोई गलत फहमी हुई है।
और मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ कि दो एक लोगों ने मुझे उसके बारे में बताया था, लेकिन मैंने भी बात को हवा में उड़ा दिया था। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा तो विश्वास करने का कोई भी कारण नहीं रहा।
अगर ऐसा ही है तो फिर आप उससे खुद ही बात क्यों नहीं करते?
पहली बात तो है कि उसको खुद ही इस बारे में मुझसे बात करनी चाहिए, और दूसरी बात, अगर हम उसके लिए कोई लड़की देख लेते हैं और बात पक्की कर लेते हैं तो क्या ये जरूरी है कि वह हमारी बताई लड़की से शादी करने को तैयार हो जाएगा?
आप भी क्या बात करते हैं, उससे पूछा नहीं है लेकिन अभी से ही नानुकुर शुरू कर दिए।
और अगर उसने हमारी बताई लड़की से शादी नहीं की तो इसमें हमारी बात खराब नहीं होगी, तुम उसकी शादी उस पर ही छोड़ दो तो ठीक रहेगा।
लेकिन उसके माँ बाप होने के नाते हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है या नहीं?
और उसका उसका हमारा बेटा होने के नाते क्या हमारे प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? अरे अगर वह हमारे घर में अपनी कमाई में से कुछ नहीं देता है तो कम से कम अपनी खुद की शादी के लिए कुछ तो जमा करे, या अब उसके कमाने के बाद भी उसकी शादी का पूरा खर्च भी मैं ही उठाऊं।
हाँ, आपकी यह बात तो सही है।
चलो, तुम्हें मेरी कोई बात तो सही लगी है।
लेकिन फिर भी उसका घर बसाने की पहल तो करनी पड़ेगी ना?
मैंने कहा ना, उसको उसके हाल पर छोड़ दो। मैं जानता हूँ, जिंदगी ने मुझे इतना अनुभव तो दिया है कि ऐसे लोग अपना घर खुद ही बसा लेते हैं।
आपका अनुभव मेरी समझ से तो बाहर है।
तुम देखती जाओ, धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारी समझ में आता जाएगा। इधर रिया की पढ़ाई भी खत्म हो गई है, हमें उसकी शादी का भी तो सोचना है।
लेकिन उससे पहले शशांक की शादी करना है।
यह सब शशांक को भी सोचना है। क्यों, तुम इतना उदास क्यों बैठी हो? क्या मायके से कोई बुरी खबर आई है?
आपको तो टेंशन में भी मजाक ही सूझता है। क्या आपको पता नहीं है कि शशांक ने लव मैरिज करके अपना अलग घर बसा लिया है? ऐसे में कोई माँ उदास नहीं बैठेगी तो क्या अटहाके लगाएगी?
मैं तो पहले ही कहता था कि शशांक लापरवाह और स्वार्थी लड़का है, उस पर ज्यादा भरोसा मत करो। मगर नहीं, अब सूद समेत चुका दिया है उसने तुम्हारे लाड़ प्यार का बदला।
मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि शशांक ऐसा निकलेगा।
मगर मैंने तो पूत के पांव पालने में ही देख लिए थे, इसलिए मैं तुम्हें समझाता था। अब दिल छोटा ना करो, यही जिंदगी है, इसमें यही सब कुछ चलता है। मैं तो पहले से ही तैयार था, इसलिए मुझे ज्यादा दुख नहीं है।
एक शशांक का ही तो सहारा था लेकिन उसने भी मुंह फेर लिया।
बड़ा चालाक निकला वो, घर में तनख्वाह ना देकर वो अपना अलग आशियां बसाने की तैयारी करता रहा था। अगर हमें बताता तो क्या हम उसे मना करते?
मुझे तो अब अपने बुढ़ापे की चिंता होने लगी है।
आप चिंता ना करो मम्मी, मेरी नौकरी लग गई है और अब मैं आप लोगों को संभालूंगी।
देखा शांति तुमने, तुम जिस लड़की को लड़के के आगे महत्व नहीं देती थी वही लड़की आज लड़के का विकल्प बन गई है। शाबाश बेटी, लेकिन मैं इतना स्वार्थी भी नहीं, मैं तुम्हारी जल्दी ही शादी कर दूंगा।
नहीं पापा, मैं अभी शादी करने की जल्दी में नहीं हूँ। अच्छा लड़का, एक ऐसा लड़का जो मेरे साथ साथ आप दोनों का भी ख्याल रखे, ऐसा लड़का मिलते ही मैं आप लोगों को बता दूंगी। तब तक मैं ही आप लोगों को संभालूंगी।
बेटी, आज तूने साबित कर दिया कि तू बेटी नहीं बेटा है। आज मैं जान गई हूँ कि बेटी भी अपने माँ बाप का संबल बन सकती है।
बिल्कुल, आजकल बेटियां ही बेटों का विकल्प है।
विकल्प, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इस नाटक के कलाकार थे अमृता वकील, नम्रता तिवारी और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।